का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आज प्रस्तुत है ज्योत्सना सिंह की लिखी कहानी सन्यासिनी। सन्यासिनी, स्वाहा 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 की ध्वनि प्रतिध्वनि उसकी कुटिया से आती हुई बाहर के माहौल को भक्तिमय कर रही हो, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि वो जगह भक्ति के लिए उपयुक्त ही नहीं थी। वो तो जीवन के अटल सत्य को दर्शाने वाला स्थान था। शमशान के भीतर थी उसकी कुटिया और वो थी शमशान की सन्यासिनी। पूरे माहौल में चमड़ी के जलने से आने वाली गंध के साथ उसकी मदिरा की दुर्गंध ने वातावरण को विभत्स बना रखा था। हर आने वाली लाश के परिजनों को उसे भेंट चढ़ानी होती थी, नहीं तो यहां से जाने वाला हर आदमी परेशान रहता है, ऐसा मिथक फैला रखा था उसने और शमशान के कर्मचारियों ने। काले कपड़े का एक लंबा झिंगोला जैसा वस्त्र, काले घने लंबे बाल और चेहरे पे काले रंग का ही लेप उसकी छवि को डरावना सा बनाते थे। बस उसकी आंखें शराब के नशे में यूं लाल रहती जैसी दो दहकते हुए कोयले के अंगार, जिनको देखने मात्र से उसके अंदर की आग की दहक पता चलती थी। जितनी क्रूरता और कठोरता वह अपने व्यक्तित्व में ला सकती थी, सब उसने अपने में समाहित किया हुआ था। परसों से वह मौसम या माहौल कुछ भी रहा, पर सन्यासिनी ने अपनी पूजा में कोई भी विघ्न नहीं आने दिया था। शमशान के लोग जानते थे कि वो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहती है, जिसकी वजह से वो मसान की देवी की अर्चना हवन रोज ही करती है और फिर शमशान की आने वाली पहली अर्थी के दर्शन कर ही वो मधु का पान करती है। आज भी वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। हवन कर शमशान की सीढ़ियों से उतरती हुई पहली अर्थी को दर्शनों को वह पास आई ही थी कि उसके पांव ठिठक गए। इतने सालों में आज पहली बार हुआ कि वो अर्थी को देखकर विचलित हुई। ये क्या, मधु दीदी पूरे 16 श्रृंगार के साथ दुनिया से विदा हो गई और गले में वही मोहर पहने? एक पल को ठिठके उसके कदम को उसने बड़ी कठोरता से संभाला और अपने नजराने के तौर पर गले से वो मोहर उतारने लगी कि किशोर ने मधुरवाणी में कहा, आप ये ना उतारें, मेरी अम्मा की प्रबल इच्छा थी कि वो चिता पर इसे पहन कर जाए। आपको इसके बदले में जो चाहिए ले ले, मैं दे दूंगा। सन्यासिनी ने उस नवयुवक को नजर भर के देखा और दिल को कठोर कर कहा, हम यही लेंगे, नहीं तो मेरी पूजा और तेरी ये चिता दोनों की आग में दहक पूरी ना होगी।
पर मैंने अपनी अम्मा को वचन दिया है, वो कहती थी इसमें उनकी जान बसती है।
हाँ, तो जब जान ही ना रही तो इसका क्या? कह सन्यासिनी ने अब तक के रुके हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि नवयुवक घुटनों पे बैठ उसके आगे हाथ छोड़ कर विनती करने लगा, मुझे मेरी अम्मा को दिया वचन पूरा कर लेने दे। उसके निर्दोष मुखड़े को देख सन्यासिनी एक पल को फिर विचलित हुई, पर फिर कठोरता से उसने लाश के गले से वो मोहर उतार ली। ये देख किशोर बिलक उठा, परिजन उसे कुछ समझाते कि सन्यासिनी ने मोहर वापस लाश के ऊपर रख दी और लाश के माथे को चूम लिया और अपनी कुटिया में जा मधुपान करने लगी। शराब की गंध और चमड़ी जलने की दुर्गंध ने वातावरण में जुगुप्सा का पुट छा दिया था। वो जितनी भी शराब पीती उसकी व्याकुलता उतनी ही बढ़ती जाती। आज वो खुद को नशे में धुत कर देना चाह रही थी, पर नशा था कि उस पर असर ही ना कर रहा था।
और वह अपने पूरे होश और हवास में 20 साल पीछे की जिंदगी के पन्नों को अपने समक्ष फड़फड़ाते हुए देख रही थी।
गोरा चिट्टा रंग, सुकोमल सुंदर काया, घने लंबे बाल और गोल गोल मुखड़े पे बड़ी बड़ी हिरणी जैसी आंखें,
सुंदरता के सारे मायने पे खरी उतरती सुधा अपने स्वभाव में भी चंचल तितली सी और खुश मिजाज थी। उसके ठीक विपरीत थी उसकी मधु दीदी। सांवला रंग, घुंघराले बाल और तुनक मिजाज स्वभाव, हर बात को दिल में रखकर बदला लेने जैसी प्रवृत्ति। पर सुधा थी कि अपनी मधु दीदी पे जान निछावर करती थी। मधु दीदी को उसके रंग रूप से कष्ट तो शुरू से ही था, पर वक्त जब ब्याह का आया और हर कोई रिश्ता सुधा के लिए बताता तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाती। एक अच्छा रिश्ता और मधु का विवाह हो गया। मधु बहुत खुश थी। उसका विवाह एक बहुत ही बड़े घर में हुआ था। अब जब मधु के पांव भारी होने की बात उसके मायके पहुंची तो सबसे ज्यादा खुश सुधा हुई। फागुन माह लग चुका था। मधु की ससुराल से सुधा को होली खेलने का बुलावा आया तो सुधा बहुत खुश हुई और मधु दीदी की ससुराल जाने के लिए पिता से जिद करने लगी। पिता के हाँ कहते ही माँ बोली भी, सुधा को मत भेजो, जवान बिटिया है, ऊपर से त्योहार भी वो होली का, मुझे कुछ ठीक ना लग रहा है। क्या ठीक ना होगा अम्मा, होली तो त्योहार ही जीजा साली का है, हम जाएंगे मधु दीदी के यहाँ होली खेलने। और वो अपनी लाड़ भरी बातों से अम्मा को मना, मधु दीदी की ससुराल जाने के लिए तैयारी करने लगी। तभी अम्मा ने गहनों की अलमारी खोल उसे एक चेन पहनने को दी। ये लो पहन लो, त्योहार में पहन के ससुराल नंगे गले जाओगी क्या, लोग क्या कहेंगे। तभी गहनों के बीच मोहर देख वो बोली, अम्मा ये भी चेन में डाल दो ना, हम इसे पहनेंगे। ना बिटिया ना, ये तो मधु को पसंद है, जब उसका बच्चा होगा तब देने का वादा किए हैं, ये ना पहन बिटिया, उसे अच्छा ना लगेगा। सुधा ने अम्मा के हाथ से लेते हुए कहा, जब दीदी के बच्चा होगा तब दे देना, तब तक हम पहन के जरा जीजा जी पे रोप तो झाड़ लें। और खिलखिलाते हुए उसको पहन मधु दीदी की ससुराल होली खेलने के आ गई कि उसकी जिंदगी ही विश हो गई। ससुराल में सब उसे देख जितना खुश हुए, मधु उतना ही जल भुन गई, क्योंकि सब सुधा को ही पूछ रहे थे। उसके प्रति लोगों का ध्यान थोड़ा कम क्या हुआ कि वो तो बेफर ही पड़ गई और सुधा को एकांत में ले जा बोली, ये मोहर तूने क्यों पहनी है, ये तो अम्मा ने हमको देने को कहा है। हाँ हाँ, जब बच्चा आएगा तब ना, सुधा ने अपनी मधु दीदी को प्यार से धमकी देते हुए कहा। तभी उसके जीजा जी वहां आ पहुंचे और बोले, क्या चल रहा है बहनों में। मधु गुस्सा छिपाते हुए मुस्कुरा के बोले, ज्यादा मेरी बहन के पीछे ना पड़ो। सुधा ने चुहल करते हुए कहा, पढ़ो जीजा जी पढ़ो, होली का माहौल है और होली तो होती ही जीजा साली की है, क्यों दीदी। उसके अल्हड़पन को देख जीजा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेर दिया, पर ये सब मधु के बर्दाश्त के बाहर हो गया और सुधा के गले में चमकती वो मोहर भी उस पर अपनी ही बहन के प्रति बचपन से भरी ईर्ष्या और मोहर के प्रति लालच ने विकराल रूप ले लिया और उसने रंग वाले दिन सुधा को धोखे से शराब पिला दी और नशे की हालत में उसे पीछे के कमरे में बंद कर दिया और खुद रंग का मजा लेने लगी। पर वक्त उसे तो कुछ और ही मंजूर था। अपनी साली को रंग खेलते ना पा उसे खोजते हुए उसके जीजा जी उस कमरे तक पहुंच गए। भंग का रंग जरा उन पर भी चढ़ा हुआ था। वो नशे में मदमस्त हो रही सुधा के रूप में ऐसे खोए कि नशे ने रिश्तों की सीमा ही पार कर दी। घर की नौकरानी ने ये खबर मधु को दे दी तो होली के सारे रंग स्याह हो गए। वो पूरे घर के साथ उस कमरे में पहुंची और सुधा और अपने पति के संबंधों के चीथड़े उड़ा दिए। सुधा को उसी हालत में घर से निकाल दिया गया।
पति तो पुरुष था, उसका कसूर का पड़ला हल्का कर दिया गया। सुधा स्त्री, वो भी पराए घर, ऊपर से नशे में, कहाँ क्षम्य था ऐसा कसूर। मधु दीदी ने अपने घर के पट उसी क्षण उसके लिए बंद कर दिए। सुधा निर्लज्जता का दाग दामन पे ले कहाँ जाती। उस ढलते दिन के धधलके में भटकती हुई जा पहुंची अवघड़ साधुओं की टोली में। रिश्तों की जो डोर उससे टूटी थी, उसका जाल बिछाने वाली उसकी अपनी ही बहन थी, कहाँ पता था उसे। वो सारा दोष अपने नशे को दे खुद को ही कोस रही थी। यही वजह थी कि उसने खुद को बस्ती से दूर औघड़ सन्यासियों के साथ दर दर का राही बना दिया और खुद को शराब का आदि। औघड़ की दीक्षा देने वाले उसके गुरु ने उससे कहा था कि शमशान में रहकर वो देवी की उपासना करे, तभी उसे अपने किए अपराध से निजात इसी जीवन में मिल जाएगी, नहीं तो रिश्तों को कलंकित करने वाला ना जाने कितने जन्मों तक इसका दंड भोगता है। वो नशे से थर थर कांप रही थी कि किशोर उसकी कुटिया तक आ पहुंचा और बोला, आपने कोई अपराध नहीं किया, मेरी अम्मा की ईर्ष्या ने आपको अपराधी बनाया। मेरे पिता ने मेरी अम्मा को कभी माफ नहीं किया, वो घर में रहते हुए भी सन्यासियों सा जीवन जीते रहे। मेरे पिता ने मुझे आपसे आशीर्वाद लेने को कहा है। वो जो दूर गेरवे वस्त्र में खड़े सन्यासी हैं, वे मेरे पिता हैं। ये सब सुन सन्यासिनी सुधा की दहकती अंगारों सी आंखों से जलते हुए अश्रुधारा का सैलाब फूट पड़ा और उसने वहां रखे अपने त्रिशूल को अपनी छाती में उतार दिया और बोली, रिश्तों के रंग को बदरंग करने की मेरी सजा आज पूरी हुई। बस यही थी आज की कहानी। गाथा में आज आपने सुनी ज्योत्सना सिंह की कहानी, जिसे आपके लिए प्रस्तुत किया ज्योत्सना सिंह ने।